एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सबसे जुड़ा है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप।
और इस अहम मुद्दे को समझने में हमारी मदद करेंगे जाने माने राजनीतिक विचारक रिचर्ड बेलामी। हमारे पास है उनकी दो महत्वपूर्ण किताबें, सिटीजनशिप और सिटीजनशिप अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपका पहला मेजबान
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। तो पहला सवाल यही उठता है कि भाई, नागरिकता पर बात करना आज इतना जरूरी क्यों हो गया है?
बिल्कुल, देखिए ना, दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। ग्लोबलाइजेशन है, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, फिर ये अधिकारों और जिम्मेदारियों की बहस हमेशा चलती रहती है। तो ऐसे में नागरिक होने का मतलब क्या है, ये समझना तो बहुत जरूरी हो गया है।
हाँ, और कभी कभी तो लगता है कि नागरिकता की कोई कीमत ही नहीं रही। और दूसरी तरफ देखें तो देशों के बॉर्डर और पहचान को लेकर कितना, मतलब, जुनून सा दिखता है।
सही कहा, और इसी कन्फ्यूजन को, इसी पहेली को रिचर्ड बेलामी सुलझाने की कोशिश करते हैं। वो हमें एक नया नजरिया देते हैं, कहते हैं कि नागरिकता को सिर्फ एक कानूनी ठप्पे की तरह मत देखो।
हाँ, बल्कि एक सक्रिय, एक पॉलिटिकल नजरिए से देखो। ये सोचने का एक अलग ही तरीका है ना।
बिल्कुल, तो चलिए शुरू करने से पहले जरा जान ले कि ये रिचर्ड बेलामी है कौन, मतलब इनकी बात में वजन क्यों है।
रिचर्ड बेलामी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन यानी UCL में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, और इनकी खासियत है यूरोपीय राजनीति, संविधान और लोकतंत्र जैसे विषयों में इनकी गहरी पकड़।
प्रोफेसर तो बहुत हैं, इनकी खास बात क्या है, मतलब इनका नजरिया कैसे अलग है?
उनकी खास बात है उनका दृष्टिकोण। वो पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और आधुनिक रिपब्लिकनिज्म के बड़े समर्थक हैं। अभी सुनने में थोड़े भारी शब्द लग सकते हैं।
हाँ, लग तो रहे हैं, आसान भाषा में बताएं।
आसान भाषा में मतलब ये कि वो मानते हैं कि लोकतंत्र की असली ताकत वो सिर्फ संविधान की किताबों या अदालतों में बंद नहीं है। असली जान तो हम नागरिकों के बीच जो लगातार बहस होती है, चर्चा होती है, हम मिलकर जो फैसले लेते हैं, उसमें है।
अच्छा, तो मतलब लोकतंत्र सिर्फ ऊपर से दिया गया ढांचा नहीं,
नहीं,
बल्कि नीचे से लोगों की भागीदारी से बनता है। ये तो काफी रेडिकल विचार लगता है।
हाँ, और यही बात उनके काम को महत्वपूर्ण बनाती है। वो थ्योरी को प्रैक्टिकल दुनिया से जोड़ते हैं। उन्होंने इस बात पर बहुत सोचा और लिखा है कि कैसे किसी समाज में व्यक्तिगत आज़ादी भी रहे और लोग मिलकर शासन भी चला सकें। और इसी अनुभव के कारण वो नागरिकता जैसे उलझे हुए विषय पर इतनी अच्छी तरह लिख पाए हैं।
समझ गया, तो फिर उनकी किताबों का सार क्या है, नागरिकता को लेकर उनका मेन आर्ग्यूमेंट क्या है?
देखिए, बेलामी का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि नागरिकता सिर्फ एक लीगल स्टेटस या किसी देश की पहचान का टैग नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा है। उनके हिसाब से नागरिकता असल में एक सक्रिय राजनीतिक अभ्यास,
एक्टिव पॉलिटिकल प्रैक्टिस।
सक्रिय राजनीतिक अभ्यास, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे,
मतलब ये कि नागरिक होने का असली मतलब है अपने समाज, अपने देश के सामूहिक स्वशासन में, यानी कलेक्टिव सेल्फ गवर्नेंस में एक्टिवली और बराबरी से हिस्सा लेना। सरकार कैसे चले, कानून क्या बने, इन सब में सिर्फ नेताओं के नहीं, आम नागरिक की भी आवाज हो, उसकी भागीदारी हो।
तो वो इस आम सोच को चैलेंज कर रहे हैं कि नागरिकता बस मिल जाती है, जैसे पासपोर्ट मिल गया, बस हो गए नागरिक।
बिल्कुल, वो कहते हैं नागरिकता वो नहीं जो हमारे पास है, बल्कि वो है जो हम करते हैं। ये हमें पुराने रिपब्लिकन विचारों की याद दिलाता है, जहां नागरिक होना एक एक्टिव जिम्मेदारी थी, एक काम था, सिर्फ बैठे बैठे अधिकार एंजॉय करना नहीं।
तो बेलामी आज के दौर के लिए क्या सवाल उठाते हैं? वो पूछते हैं, आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में नागरिक होने का मतलब क्या है? एक डेमोक्रेसी कैसे व्यक्ति के अधिकारों और पूरे समाज के फैसलों में बैलेंस बना सकती है? और उनका मानना है कि अगर लोकतंत्र को मजबूत और असरदार बनाए रखना है, तो हमें सभी नागरिकों की बराबर भागीदारी पक्की करनी होगी, चाहे उनमें कितनी भी विविधता क्यों ना हो। और ये करने के लिए आज भी सबसे जरूरी प्लेटफॉर्म हमारा देश यानी नेशन स्टेट ही है। यहीं पर एक्टिव सिटीजनशिप से लोकतंत्र को ताकत मिल सकती है।
चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। नागरिकता की ये जो समझ है, ये हमेशा से तो ऐसी नहीं थी, है ना? बेलामी इसके इतिहास के बारे में क्या बताते हैं?
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है कि ये विचार बदला है। बेलामी हमें हिस्ट्री में ले जाते हैं। जैसे प्राचीन ग्रीस, खासकर एथेंस, वहां नागरिक होने का मतलब था शहर के शासन में डायरेक्ट हिस्सा लेना, डिबेट करना, वोट देना, पद संभालना। अरस्तु ने तो कहा ही था कि इंसान स्वभाव से ही राजनीतिक प्राणी है।
हाँ, लेकिन वो नागरिकता तो बहुत क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव थी ना। महिलाएं, गुलाम, विदेशी, ये सब तो बाहर थे।
सही कहा, वो मॉडल भागीदारी पर तो जोर देता था, पर समावेशी बिल्कुल नहीं था। इसके उलट रोमन साम्राज्य को देखें तो उन्होंने नागरिकता को एक कानूनी दर्जे पर ज्यादा फोकस किया। रोमन नागरिक हैं तो कानून आपको कुछ अधिकार देता है, चाहे आप कहीं भी हो। ये ज्यादा लोगों को शामिल करता था, पर इसमें डायरेक्ट भागीदारी वाली बात कम थी।
और फिर आधुनिक जमाने में क्या बड़ा बदलाव आया?
सबसे बड़ा मोड़ आया फ्रांसीसी क्रांति के साथ। उसने नागरिकता को राष्ट्रीयता और पॉपुलर सोवरेनिटी, यानी जनता ही असली मालिक है, के आइडिया से जोड़ दिया। अब लोग राजा की प्रजा नहीं रहे, बल्कि राष्ट्र के बराबर के सदस्य बन गए। तो ये पूरा सफर दिखाता है कि नागरिकता कोई फिक्स चीज नहीं है, ये बदलती रही है।
ठीक है, अब आते हैं आज की नागरिकता और उसके अधिकारों पर। इस पर बिलामी क्या कहते हैं?
आपने टी.एच. मार्शल का नाम लिया था। हाँ, बेलामी यहाँ समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल के एक बहुत प्रभावशाली फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें अपना एक रिपब्लिकन ट्विस्ट डालते हैं। मार्शल ने कहा था कि नागरिकता के अधिकार धीरे धीरे तीन स्टेज में विकसित हुए।
कौन कौन से?
पहले आए नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स, जैसे बोलने की आज़ादी, कानून के सामने बराबरी, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार। ये करीब 18वीं सदी की बात है। फिर आए राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स, जैसे वोट देने का, चुनाव लड़ने का अधिकार। ये 19वीं सदी में। और आखिर में आए सामाजिक अधिकार, सोशल राइट्स, जैसे अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बेरोजगारी या बुढ़ापे में मदद पाने का अधिकार, ताकि सब लोग एक डिग्निटी वाली जिंदगी जी सके। ये 20वीं सदी की देन है।
मार्शल का मानना था कि ये सामाजिक अधिकार मिलने के बाद ही नागरिकता पूरी होती है, क्योंकि तभी सब लोग सही मायनों में समाज का हिस्सा बन पाते हैं, है ना?
हाँ, और बेलमी मार्शल की इस बात की अहमियत को मानते हैं, लेकिन वो अपने रिपब्लिकन नज़रिए से देखते हुए कहते हैं कि मार्शल का मॉडल नागरिक को थोड़ा पैसिव बना देता है, जैसे नागरिक बस बैठा है और अधिकार ले रहा है। बेलमी के लिए इन सब अधिकारों में राजनीतिक अधिकार सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों? सिविल और सोशल अधिकार भी तो जीने के लिए चाहिए।
इसलिए, क्योंकि बेलमी का तर्क है कि ये राजनीतिक अधिकार ही वो चाबी हैं जिनसे बाकी अधिकारों के दरवाजे खुलते हैं या बंद होते हैं। जब नागरिक एक्टिव होकर राजनीति में हिस्सा लेते हैं, तभी वो मिलकर तय करते हैं कि उनके सिविल और सोशल अधिकार क्या होंगे, कितने होंगे, कैसे लागू होंगे। अधिकार कहीं से टपकते नहीं हैं, उन्हें राजनीतिक एक्शन के जरिए हासिल करना पड़ता है और बचाए रखना पड़ता है।
अच्छा, तो मतलब अधिकार पाने के लिए भी पॉलिटिकली एक्टिव होना पड़ेगा। ये तो सोचने का एकदम अलग तरीका है। तो इसका मतलब नागरिकता सिर्फ हक मांगना नहीं, इसमें जिम्मेदारियां भी शामिल हैं।
देखो, बेलामी नागरिकता को एक तरह का पब्लिक ऑफिस या सार्वजनिक पद मानते हैं। जैसे किसी पद पर बैठी व्यक्ति की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, वैसे ही हर नागरिक की हैं। वोट डालना, टैक्स देना, कानूनों का पालन करना, सार्वजनिक मुद्दों पर बहस में हिस्सा लेना। अधिकार और जिम्मेदारियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है।
ये नागरिकता और राष्ट्रीयता का रिश्ता भी बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। इस पर बेलामी क्या कहते हैं? क्या नागरिक होने के लिए एक जैसा कल्चर या भाषा होना जरूरी है?
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है आज के दौर में। बेलामी दो तरह के राष्ट्रवाद में फर्क बताते हैं। एक है सिविक नेशनलिज्म, जो साझा राजनीतिक मूल्यों, कानूनों और इंस्टीट्यूशंस पर आधारित होता है। मतलब हम इसलिए एक राष्ट्र हैं क्योंकि हम कुछ बेसिक नियमों और आदर्शों पर सहमत हैं, चाहे हम दिखते अलग हों या बोलते अलग हों।
और दूसरा?
दूसरा है एथनिक नेशनलिज्म, जो साझा खून, नस्ल, भाषा या संस्कृति पर आधारित होता है। मतलब हम इसलिए एक राष्ट्र हैं क्योंकि हम एक जैसे हैं, हमारी जड़ें एक हैं।
सुनने में तो सिविक वाला ज्यादा अच्छा और ओपन लगता है।
हाँ, थ्योरी में तो लगता है, लेकिन बेलामी प्रैक्टिकल बात करते हैं। वो कहते हैं कि असलियत में ज्यादातर देश, चाहे वो खुद को कितना भी सिविक कहें, समाज को जोड़े रखने के लिए किसी न किसी तरह की साझा संस्कृति या इतिहास पर निर्भर करते ही हैं। और इसी वजह से ये टेंशन हमेशा बनी रहती है कि देश की सीमाएं क्या हों, कौन हम हैं और कौन वो, और नए लोग जैसे अप्रवासी, उन्हें किन शर्तों पर शामिल किया जाए।
और इसी से जुड़ा है वो विभेदित नागरिकता या डिफ्रेंशिएटेड सिटीजनशिप का आइडिया। इसका मतलब है कि कुछ ग्रुप्स को अलग अधिकार मिले।
हाँ, ये एक और मुश्किल सवाल है। क्या सबके लिए एक ही कानून, एक ही तरह के अधिकार हमेशा न्याय करते हैं? कुछ विचारक, जैसे फेमिनिस्ट क्रिटिक्स, कहते हैं कि पारंपरिक राजनीति ने महिलाओं के अनुभवों को नज़रअंदाज किया है, इसलिए उन्हें बराबरी पर लाने के लिए शायद कुछ अलग उपायों की ज़रूरत हो। इसी तरह मल्टीकल्चरलिज्म के समर्थक कहते हैं कि अगर हमें सच में बराबरी चाहिए तो हमें माइनॉरिटी ग्रुप्स की खास ज़रूरतों और कल्चर को समझना होगा और शायद उन्हें कुछ खास अधिकार यानी ग्रुप डिफरेंशिएटेड राइट्स देने पड़ें।
इस पर बेलामी का क्या टेक है? क्या वो ऐसे स्पेशल राइट्स को सपोर्ट करते हैं?
बेलामी यहाँ भी एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, कभी कभी पुरानी नाइंसाफियों को ठीक करने या मौजूदा असमानताओं को कम करने के लिए कुछ खास इंतजाम ज़रूरी हो सकते हैं, लेकिन वो साथ में ये चेतावनी भी देते हैं कि ऐसा करते हुए हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी जो साझा नागरिक पहचान है, जो सबके बीच बातचीत का पुल है, वो कमज़ोर ना पड़ जाए। अनेकता में एकता का मतलब ये नहीं कि सब एक जैसे बन जाए। असली एकता तब आती है जब हम सब अपनी अलग अलग पहचानों के साथ एक साझा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता दिखाते हैं, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी से नहीं।
आखिर में बेलामी देश की सीमाओं से आगे की नागरिकता जैसे यूरोपियन सिटीजनशिप या ग्लोबल सिटीजनशिप के बारे में क्या सोचते हैं? आजकल ये बातें बहुत होती हैं।
इस मामले में बेलामी थोड़े स्केप्टिकल हैं, मतलब शंकालु हैं। उनका तर्क है कि एक मीनिंगफुल पॉलिटिकल सिटीजनशिप के लिए एक डेमोस का होना जरूरी है।
डेमोस, ये क्या होता है?
डेमोस मतलब लोगों का एक ऐसा समूह जो खुद को एक पॉलिटिकल कम्युनिटी मानता हो, जिनकी एक साझा पहचान हो और जिनके पास मिलकर फैसले लेने के लिए साझा संस्थाएं यानी इंस्टीट्यूशंस हो।
और दुनिया के लेवल पे ऐसा डेमोस नहीं है?
बेलामी के मुताबिक अभी तो नहीं है। पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने वाली कोई मजबूत राजनीतिक पहचान या असरदार लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं है जहां सब मिलकर फैसले ले सकें। इसलिए यूरोपियन सिटीजनशिप जैसी चीजें फिलहाल नेशनल सिटीजनशिप का एक सप्लीमेंट हो सकती हैं, उसका विकल्प नहीं। उनका मानना है कि बेशक हमारी समस्याएं ग्लोबल हो रही हैं, लेकिन उनके हल के लिए असरदार डेमोक्रेटिक एक्शन का मैदान आज भी हमारा देश यानी नेशन स्टेट ही है। भविष्य नेशनल सिटीजनशिप को छोड़ने में नहीं, बल्कि उसे और बेहतर और ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाने में है और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में है।
तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो बेलामी के विचारों से हमारे लिए टेकअवेज क्या हैं? सबसे पहली और जरूरी बात क्या लगती है आपको?
मेरे हिसाब से सबसे जरूरी बात यह है, नागरिकता कोई पैसिव चीज नहीं जिसे लेकर बैठ गए। ये एक एक्टिव काम है, एक प्रैक्टिस है। ये सिर्फ अधिकार पाना नहीं बल्कि पब्लिक लाइफ में शामिल होना, बहस करना और अपने समाज को बनाने में योगदान देना है। और जब हम ये नहीं करते तभी लोकतंत्र कमज़ोर होता है, हम राजनीति से दूर हो जाते हैं। तो सीधा मतलब है सिर्फ वोट डालना काफ़ी नहीं, लगातार एंगेज रहना होगा।
हाँ, और दूसरी बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो है अधिकारों और जिम्मेदारियों का गहरा कनेक्शन। ये अलग अलग नहीं बल्कि जुड़े हुए हैं। अपने अधिकारों को बचाना है तो एक्टिव नागरिक बनना पड़ेगा और जिम्मेदारियां निभाना ही एक अच्छे समाज की बुनियाद है। अपने देश में भी ये अधिकार बनाम कर्तव्य की बहस चलती है। बेलामी का नजरिया ये समझने में मदद करता है कि ये दोनों साथ साथ चलते हैं।
तीसरा अहम पॉइंट है समावेश और विविधता का सवाल। नागरिकता की हदें तय करते समय हमें भेदभाव से बचना चाहिए और लोकतांत्रिक उसूलों पर चलना चाहिए। भारत जैसे विविध देश में एकता किसी एक कल्चर को थोप कर नहीं आ सकती। एकता तब बनती है जब हम सब अलग अलग होते हुए भी एक साझा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करें।
और चौथा जो बार बार सामने आता है वो है राजनीति की इम्पोर्टेंस और डेमोक्रेटिक डेफिसिट का खतरा। बेलामी बार बार कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ही वो मास्टर चाबी है जिससे बाकी सारे अधिकार खुलते हैं और सुरक्षित रहते हैं। जब नागरिक सुस्त पड़ जाते हैं तो पावर कुछ गिने चुने लोगों या एक्सपर्ट्स के हाथ में चली जाती है और आम लोगों की आवाज़ कमज़ोर हो जाती है। इसी को लोकतांत्रिक घाटा कहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपनी डेमोक्रेटिक संस्थाओं को मजबूत करें और लोगों की भागीदारी के रास्ते खोलें।
बेलामी के कुछ विचार तो सच में सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे उनका ये कहना कि नागरिकता का मतलब सिर्फ कुछ अधिकार होना नहीं बल्कि अधिकार पाने का अधिकार, द राइट टू हैव राइट्स होना है।
अधिकार पाने का अधिकार, इस सुनने में थोड़ा घुमावदार है। इसका मतलब क्या है ठीक से?
हाँ, है तो थोड़ा फिलोसॉफिकल, पर इसका मतलब है वो पॉलिटिकल पावर, वो राजनीतिक क्षमता जिससे आप उस प्रोसेस में हिस्सा ले सकें जो ये तय करता है कि नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और क्या नहीं। मतलब आप सिर्फ अधिकारों के रिसीवर नहीं हैं, आप उनके मेकर भी हैं। ये नागरिक की एक्टिव भूमिका पर बहुत जोर देता है।
वाह, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है।
और कोई ऐसा ही यादगार विचार?
हाँ, एक और बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, लोकतांत्रिक नागरिकता का मतलब किसी पहले से तयशुदा कल्चरल या एथनिक ग्रुप का मेंबर होना नहीं है, बल्कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस के जरिए लगातार एक पॉलिटिकल कम्युनिटी को मिलकर बनाते रहने में हिस्सा लेना है। मतलब हमारी एकता की बुनियाद हमारी साझी राजनीति है, हमारा साझा खून या कल्चर नहीं। हम साथ मिलकर अपना आज और कल गढ़ते हैं।
ये भी बहुत गहरा विचार है। और वो जो व्यक्तिगत अधिकारों और सामूहिक शासन की बात थी?
हाँ, कि आज की चुनौती इन दोनों में से किसी एक को चुनना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये दोनों एक दूसरे पर कैसे निर्भर है। पर्सनल लिबर्टी भी तभी सुरक्षित है जब एक मजबूत डेमोक्रेटिक समाज हो, और डेमोक्रेटिक समाज तभी मजबूत होगा जब हर व्यक्ति की आज़ादी का सम्मान हो। ये लिबरल और रिपब्लिकन सोच को जोड़ने की एक कोशिश है।
और ग्लोबलाइजेशन पर उनका वो प्रैक्टिकल नजरिया भी याद रखने जैसा है।
बिल्कुल, कि हाँ, प्रॉब्लम ग्लोबल है, लेकिन उनके सल्यूशन के लिए आज भी हमें मजबूत डेमोक्रेटिक देशों की जरूरत है। जब तक असरदार ग्लोबल डेमोक्रेटिक संस्थाएं नहीं बनती, तब तक ग्लोबल सिटीजनशिप की बातें थोड़ी मतलब हवा हवाई लगती हैं। ये हमें जमीन पर रखता है।
तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या कनेक्शन है? हम इन आइडियाज से क्या सीख सकते हैं?
पहला तो यही कि हम वोटिंग को या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेने को कैसे देखते हैं, ये बदल सकता है। ये सिर्फ एक ऑप्शन या हक नहीं, बल्कि नागरिक होने के नाते हमारी एक बेसिक ड्यूटी है। ये उस सोच के खिलाफ है कि मेरे अकेले से क्या होगा, या पॉलिटिक्स तो गंदी चीज है, दूर रहो।
सही बात है। और दूसरा, ये हमें इमिग्रेशन या नेशनल आइडेंटिटी जैसे मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशीलता से सोचने में मदद करता है। बजाय सीधे किसी को अपना या पराया कहने के, हम ये सवाल पूछ सकते हैं, नए लोगों को शामिल करने की शर्तें क्या हों, इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में कॉमन सिटीजनशिप की फीलिंग कैसे बनाएं, जो लोग हमारे देश में हैं पर नागरिक नहीं हैं, उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है।
तीसरा, ये सोशल राइट्स जैसे अच्छी शिक्षा, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, इनकी अहमियत को और मजबूत करता है। ये सिर्फ सरकार की मेहरबानी नहीं है, बेलामी के नज़रिए से देखें तो ये अच्छी और एक्टिव नागरिकता के लिए ज़रूरी शर्तें हैं। एक पढ़ा लिखा, सेहतमंद और आर्थिक रूप से सिक्योर नागरिक ही तो देश की राजनीति में ठीक से हिस्सा ले पाएगा।
वो शायद सबसे पर्सनल लेवल पे ये हमें खुद से पूछने को कहता है, क्या हम सिर्फ सरकार से उम्मीदें लगाकर बैठे रहने वाले पैसिव नागरिक हैं, या अपने समाज को एक्टिवली बनाने वाले भागीदार। ये सोच हमें सरकार मेरे लिए क्या कर रही है से शिफ्ट करके हम सब मिलकर अपने लिए क्या कर रहे हैं की तरफ ले जा सकती है। और इसमें सिर्फ बड़े इलेक्शंस नहीं, अपने मोहल्ले की कोई समस्या हो या कोई सोशल इशू, उस पर आवाज उठाना भी शामिल है।
तो निचोड़ क्या है, रिचर्ड बेलामी के काम से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है?
मेरे लिए तो सबसे बड़ा सबक यही है कि भाई, डेमोक्रेसी को स्पेक्टेटर स्पोर्ट नहीं है जिसे बस दूर से देखा जाए। हमारे समाज, हमारे देश की सेहत इस बात पर टिकी है कि हम नागरिक कितने एक्टिव हैं, कितने इन्फॉर्म्ड हैं, कितने जिम्मेदार हैं। सिटीजनशिप को स्टैम्प नहीं है, ये एक डायनामिक पॉलिटिकल रिलेशनशिप है हमारे और हमारे साथी नागरिकों के बीच और हमारे और राज्य के बीच।
बहुत जरूरी है कि जिन अधिकारों को हम आज शायद फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो यूं ही नहीं मिल गए। उनके पीछे बहुत संघर्ष है, और उन्हें बचाए रखने के लिए लगातार डेमोक्रेटिक विजिलेंस यानी लोकतांत्रिक पहरेदारी की ज़रूरत है। नागरिक होना सिर्फ ये नहीं बताता कि आपका जन्म कहाँ हुआ, बल्कि ये दिखाता है कि आप समाज की भलाई के लिए क्या करने को तैयार हैं। बेलामी हमें याद दिलाते हैं कि आज़ादी और न्याय का भविष्य सिर्फ नेताओं या एक्सपर्ट्स के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, ये हम सबकी यानी एंगेज्ड और जिम्मेदार नागरिकों की कलेक्टिव जिम्मेदारी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है।
ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।